राधा माधव कुंज बिहारी गोपीगण वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी यमुना तीरवन सारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन सारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। নিতাই গর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরিনাম সংকীর্তন কি শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ কি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 15 16 और 17 जो ब्लॉक बोर्ड पर 17 नंबर श्लोक लिखा हुआ है उनकी आवृत्ति करेंगे हम। एवं भगवान बुद्धि मेनु लक्षणे एवं भवान बुद्धयमेय लक्षणे गृह गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरमन्तरं ते सर्वस्य सर्वात्म आत्मवस्तुनः एवं भवान् बुद्धयमेय लक्षणे ग्राहो गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृत्त्वाद् बहिरन्तरं न चेत् सर्वस्व सर्वात्म आत्मवस्तुनः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणे ग्राहो गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृत्तत्वाद् बहिरन्तरं ते सर्वस्य सर्वात्म आत्मवस्तुनः
Bye.
श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार है, एवं इस प्रकार भगवान हे प्रभु बुद्धि अनुमेय लक्षणे, असली बुद्धि से तथा ऐसे लक्षणों से, ग्राह्यो इंद्रिय विषयों से, गुणे गुणों से, सन्नपि यद्यपि संपर्क में, तद्गुणाग्रह उन गुणों के द्वारा स्पर्श नहीं किए जाते, अनावृत्वात् सर्वत्र उपस्थित होने से, बहिर अंतरम बाहिर अंतर न ते ऐसी कोई बात नहीं है, सर्वस्व हर वस्तु का, सर्व आत्मन सभी वस्तुओं के मूल स्वरूप, आत्म वस्तु न हर वस्तु आपकी है, किंतु आप हर वस्तु के बाहर या भीतर है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व अभिवाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण वह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में विलग होती प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती हैं। किंतु तथ्य तो यही है कि विराट जगत की जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जगत की सृष्टि के पूर्व ही महत्त्व उपस्थित रहता है, अतः महत्त्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुगम्य है, अनुभव गम्य है, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अवांग मनसा गोचर एवं अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, हमारे सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरण अर्थ, हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए ही कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फल स्वरूप आप इंद्रियों के परे हैं, यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध है, आप उनसे अभी अभ्रावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अभिवाज्य परमात्मा है, अतएव आपके लिए कुछ भी बाहर या भीतर नहीं है। आपने कभी भी देव के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रस्तुत तो आप पहले से ही वहां उपस्थित थे। तात्पर्य, भगवत गीता में 9:4 में स्वयं भगवान ने यही बात बतलाई है कि मया सत इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषा अवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप को रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है, सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान कृष्ण के नाम यश लीलाएं आदि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। जो समुचित निर्देश के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसमें भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वही सदैव भगवान गोविंद को अपने भीतर और बाहर देख सकता है। इसी तरह वे सर्वसामान्य को दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः भगवत गीता में इस श्लोक में यह कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे विचारणीय नहीं है। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है, यह संपूर्ण विराट जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां परा तथा अपरा अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियां का मेल है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के ऊपर फैलता है, उसी तरह भगवान की शक्ति सृष्टि भर में फैली हुई है और सारी वस्तुएं उन्हीं शक्ति पर टिकी हैं। किंतु उसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपनी निजी अस्तित्व खो चुके हैं। ऐसे तर्क का खंडन करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और सारे वस्तुएँ मुझ में हैं, फिर भी मैं पृथक हूँ। उदाहरण अर्थ, राजा सरकार का मुखिया होता है और वह सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। सरकार के विविध विभागों राजा की शक्तियां होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित रहता है। इतने पर ही राजा से वह आशा करना कि वह हर विभाग में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकता है, ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। यह तो वाला उदाहरण है, उदाहरण हुआ। इस तरह हम जो कुछ भी देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, चाहे वे इस भौतिक जगत में हो या वैकुंठ लोक में, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। भगवान की विभिन्न शक्तियाँ के विसरण से सृष्टि बनती है और ऐसा ही भगवद गीता में कहा गया है। वे अपने साकार रूप में सर्वत्र उपस्थित है और जो उनकी विभिन्न शक्तियाँ का विसरण है। यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि जो भगवान केवल अपनी चितवन से सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, वे भला वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ के भीतर कैसे आ सकते हैं। इस तर्क का खंडन करने के लिए ही वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह कोई बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो इसी तरह बनी है कि आप महाविष्णु के रूप में कारणों के लेटे हुए थे और आपके स्वास्थ्य से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। तब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गर्भदक्षायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए और उसके बाद अपने पुनः अपना विस्तार चिरदक्षायी विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदय में वहाँ तक कि हर परमाणु में भी भीतर हर परमाणु के भीतर प्रविष्ट कर गए। अतः आपकी आपका देवकी के गर्भ में प्रवेश उसी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रवेश किया है, किंतु उसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं। हम भौतिक उदाहरण से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति महतत्व 16 तत्वों में विभाजित होकर भी जैसा कि जैसी की तैसी बनी रहती है। अक्षत यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का मेल ही तो है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है तो लगता है कि उन तत्वों का नए सिरे से सृजन हुआ है, किंतु ये सारे तत्व शरीर के बाहर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं, आप बाहर भी विद्यमान हुए, आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, किंतु आप एक ही समय लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। आपके प्रागत्य को काफ़ी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार से मूल स्रोत हैं कि जिस तरह सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य है। न तो सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित कर सकता है, न ही आपसे उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के 3 गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु ये 3 गुण आपके आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक उसे समझते हैं कि दूसरे शब्दों में यदि भी आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उसे द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म का अथवा तेज प्रकट होता रहता है, जिससे हर वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज भगवान के शरीर के उद्भूत होता है। उसी ब्रह्म तेज से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्म तेज के आश्रय हैं। मूलतः यही सारी वस्तुओं के मूल कारण हैं, किंतु अल्पज्ञ यह सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष परिपक्व नहीं, अभी तो यह अल्पज्ञ का निष्कर्ष होता है। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वैराज्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यास्तं प्रपद्ये सूर्य सत समकांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन हरे कृष्णा सभी भक्तों को और माताएं को क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद अध्याय तीसरा और श्लोक 15, 16 और 17 का पर चर्चा हो रहा है जो वसुदेव जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति है। ये कंस के कारागृह में भगवान कृष्ण जो साक्षात प्रकट हुए हैं, पहले हमने सुना देवताओं जो भगवान कृष्ण माता देव के गर्भ में थे तब स्तुति किया, उनके बाद भगवान प्रकट हुए और उसी प्रकट होने के कारण सारा वातावरण जो व्रज में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अति रमणीय हो गया। शीतल पवन बहने लगा और सुंदर सरोवर में जल में कमल पुष्प खिलने लगे और सुगंध पवन बहने लगा। इसी तरह सुंदर वातावरण व्रज धाम में हो गया जो भगवान के प्रागट्य होने के साथ ही, और साथ साथ में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी जो पूरी रात अंधकारमय थी, लेकिन भगवान प्रागट्य के साथ साथ पूर्ण तरह से चंद्रमा निकल गए। और क्योंकि उसी के वंश में चंद्र वंश में भगवान का प्रागट्य हुआ, उसी के कारण चंद्र भी आनंदित होकर पूर्ण रूप से पूर्णिमा का तरह खिल गए। और इसी तरह सुंदर वातावरण के साथ भगवान का प्रागट्य हुआ और सुखदेव गोस्वामी फिर बाद में भगवान कृष्ण का जो शत्रुभुज रूप में प्रकट हुए उनका वर्णन करते हैं। चार हाथ चार भुजाओं में शंख पद्म गदा धारण किए हैं और सुंदर कौस्तुभ वाणी माला और वैजयंती माला धारण किया है, कौस्तुभ मणि भी धारण किया है, मोर मुकुट और मुकुट धारण किया है। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी पहले व्रज का वर्णन करते हैं, फिर बाद में भगवान का रूप का वर्णन करते हुए फिर बाद में श्री वसुदेव जी द्वारा स्तुति का प्रारंभ करते हैं। इस स्तुति के अंतर्गत आज ये तीसरा श्लोक है, तीसरा चौथा और पांचवा श्री वसुदेव जी द्वारा उच्चारित ये श्लोक है। ये तीनों श्लोक साथ में है 15, 16 और 17 और तात्पर्य हमने सुना विस्तार से प्रभुपाद ने किया है इस श्लोक का। पंद्रह नंबर श्लोक इस प्रकार है, यथे मेक विकृता पार्श्वस्ता प्रकृते सह नाना वीरिया पृथक भूता विराजम वजयंती है सन्निपित्य समुपित्य दृश्यते अनुगता इव प्रागेव विद्यमान तन्नापि तेषामिह संभव। तो भगवान वसुदेव जी कहते हैं स्तुति में, पहले उनको ऐसा भय लगने लगा, भगवान पहले शिशु के रूप में प्रकट हुए, साक्षात भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज के रूप में, तब पहले वसुदेव को थोड़ा भय लगा कि कंस के भय से उनको ऐसा डर लगने लगा कि कंस शायद इसको भी जो अगले पुत्र को जिस तरह वध किया उसी तरह इस पुत्र को भी वध कर देंगे। लेकिन तुरंत ही वो संभल गए, तुरंत ज्ञान प्रकट हो गया वसुदेव जी को और भगवान को शत्रुभुज रूप के देखकर फिर बाद में वो सोचने लगे नहीं नहीं ये तो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम प्रधान पुरुष है जो इस भौतिक जगत के सृष्टि का कारण है, तो इसलिए मुझे कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे पृथ्वी या सारे जगत इनसे ही भय पाते हैं तो मुझे कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वसुदेव जी ज्ञान के साथ संभल गए और फिर बाद में वो स्तुति करने लगे किस तरह भगवान इस भौतिक जगत के अंदर और बाहर हैं और किस तरह इस भौतिक जगत के सारे वस्तुओं के आत्मा के स्रोत है, तो इसी तरह वसुदेव जी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। इसी अंतर्गत इस श्लोक है और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं 9:4 में 9:8 में कि प्रकृति स्वाविष्टस्य सृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीम पुस्तनम प्रकृते वसा। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये प्रकृति स्वाविष्टाय मेरे द्वारा ही सर्जन होती है और पुनः पुनः सर्जन होता है और पुनः पुनः विनष्ट भी होता है, और क्यों होता है कि मेरे इच्छा के कारण और कोई कारण नहीं। मैं जब इच्छा करता हूँ तो सृष्टि सर्जन होती है और मैं जब इच्छा करता हूँ तब सृष्टि का विनाश होता है। तो इसी तरह भगवान अपनी इच्छा के कारण इस भौतिक जगत को सृजन करते हैं और अपनी इच्छा के कारण इस भौतिक जगत का विनाश करते हैं। जिस तरह कोई बालक समुद्र के तट पर जाता है और समुद्र के तट की रेत को कोई घर बनाता है, फिर बाद में अपने की इच्छा से वो बनाता है और फिर अपनी इच्छा से उसको तोड़कर चला जाता है, उसी तरह भगवान अपनी इच्छा से ही इस भौतिक जगत को सृजन करते हैं और इस भौतिक जगत से विनाश करते हैं। तो इसी तरह भगवान इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। तो साथ साथ में ये भी हमको ये याद होता है या संशय होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, और अल्पज्ञ होने के कारण हमारी इंद्रियों से यह पकड़ में नहीं आता है, तो हमें यह भी लगता है कि इस भौतिक जगत का सृष्टा प्राय सब लोग जानते कि ब्रह्मा जी है। इसी शंका को भी नारद जी ने प्रस्तुत किया था श्री ब्रह्मा जी के द्वारा, श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद में पूरा वर्णन है उनका, 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में श्री नारद जी कहते हैं कि इस सृष्टि का रचना आपने किया है वे पिताजी, इस सृष्टि का रचना आपने किया है। जिस तरह ये करोलिया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, करोलिया नहीं, करोलिया जिसकी लाल से जो अपना बनाता है जाल, मकड़ी जिस तरह वो जाल बनाता है फिर बाद में उसको अंदर ले लेता है, उसी तरह आपने अकेले ही इस सृष्टि की रचना की, ऐसा मुझे लगता है। श्री नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह ज्ञान तुम्हारा पूर्ण नहीं है, अधूरा है। वास्तव में मैं यह सृष्टि मैं नहीं किया, यह सृष्टि की रचना करने वाला कोई और है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 2:17 में स्वामिष्ठाय प्रतपन प्राण बहिष्य प्रतपस्य एवं विशेषम प्रतपस्य पत्यंत बहिर् कुमान। उदाहरण के साथ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जिस तरह सूर्य प्रकट होने से सूर्य का ताप जिस तरह सभी रोशनी देता है और तपाता है और बाहर भी प्रकाश देकर तपाता है और अंदर भी लगता है कि हमको सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उनका ताप का महसूस अनुभव हमें रहता ही है, उसी तरह इस सृष्टि में रचना करने वाले भगवान जिस तरह सूर्य का प्रकाश और किरणें फैलाता है उसी तरह भगवान की शक्ति इस सृष्टि में सृजन करती है, और उसी का स्रोत जिस तरह सूर्य किरणों का स्रोत है उसी तरह श्री भगवान परमेश्वरी इस सारे सृष्टि का स्रोत्र है। इसी तरह श्री नारद जी को श्री ब्रह्मा जी अनेक श्लोकों में व्याख्या करते हैं किस तरह सृष्टि की रचना हुई, 2 अध्याय में पूरा वर्णन है। लेकिन वास्तव में जो जिस तरह सूर्य प्रकाश से सारी भौतिक जगत प्रकाशित होता है उसी तरह भगवान की शक्ति से सृष्टि की रचना होती है। पुरुष आगे को इस प्रसंग को आगे समझने के लिए पूर्ण रूप से हमें चैतन्य चरितामृत देखेंगे तो विस्तार से उनका वर्णन श्री सनातन शिक्षा में है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को इस शिक्षा को देते हुए इस सृष्टि की किस तरह रचना होती है और किस तरह भगवान बाहर जो इस श्लोक में आया है, बाहर भी अवस्थित है और अंदर भी, और सर्व आत्मा सभी वस्तुओं के आत्मा है आप, किस तरह है उस का पूरा विस्तार से वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से करते हैं। और सनातन गोस्वामी जो वास्तव में महाबुद्धिशाली थे, फिर भी वो अपने आप को एक मूर्ख समझकर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते और कहते हैं कि साध्य साधन तत्व पुषित नाथ जानी, कृपा करी सब तत्व कह तो आमनी। साध्य मतलब साध्वजी वस्तु कौन सी है और उनको प्राप्त करने के लिए साधना कौन सा है वो आप बताइए। उस तत्व से मैं नहीं जानता हूँ, किस तरह मुझे आपसे पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कृपा करें मुझे सब तत्व बताइए, श्री चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी कहते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु इस सृष्टि की रचना कैसे हुई उसका विस्तार से वर्णन कहते और प्रथम श्लोक इसमें कहते श्रीमद् भागवतम 10:47-31 श्री उद्धव जी द्वारा नंद महाराज और यशोदा मैया के सामने श्री उद्धव जी कहते हैं, एत ही विश्व बीज योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य यथा इमो पुराणो। एतो ही विश्व बीज योनि, ये विश्व का बीज यानी कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज ब्रज पिता, मैं इस भौतिक जगत का बीज या पिता हूँ। उसी तरह श्री उद्धव जी भी कहते हैं कि ये तो ही विश्व बीज योनि, इस विश्व का बीज योनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम, रामो मतलब बलराम और मुकुंद भगवान कृष्ण, ये प्रथम उनके द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना होती है बलराम और श्री कृष्ण से ही। और ये क्या है पुरुष प्रधानम, सबसे पुरुष आदि पुरुष, सर्व कारण का कारण गोविंदम आदि पुरुषम, सबसे प्रधान पुरुष और पुराने पुरुष है। आसित भूतेषु विलक्षणस्य, सभी भूतों का सभी जीवों का भगवान राम यानी बलराम और मुकुंद कृष्ण ही स्रोत्र है। और इस ज्ञानस्य ये सात इमो पुराणों, सबसे पुराना ये है जिस इस ज्ञान को जानना चाहिए श्री उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा को। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य सनातन गोस्वामी को प्रथम इस सृष्टि की रचना कैसे होती इसकी शुरुआत करते हुए कहते हैं कि मुकुंद और भगवान बलराम से इस सृष्टि का प्रारंभ होता है। फिर आगे कहते हैं श्री सनातन गोस्वामी कि किस तरह होता है इस सृष्टि की रचना। तो प्रथम कहते हैं कि श्रेय माया एवं माया लोकिते श्री संकर्षण पुरुष रूपे अवतरण हेला प्रथम। श्री बलराम जी से संकर्षण हम जानते हैं कि शत्रु प्रकट होता है, संकर्षण वसुदेव अनुरुद्ध और प्रद्युम्न, उसमें से संकर्षण जो है वो पुरुष रूप में अवतीर्ण होला प्रथम। संकर्षण से प्रथम अवतीर्ण पुरुष होता है कारण दक्षाय विष्णु। से पुरुष विरजाते करेने सयन कारण दक्षायी नाम जगते कारण। संकर्षण से प्रथम पुरुष का आविर्भूत होता है कारण दक्षाय विष्णु। उनका कार्य क्या है तो कारण सागर में वो जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो कारण सागर है उसमें वो शयन करते हैं। उनका नाम है कारण दक्षाय विष्णु और वो जगत का कारण बनते हैं, सारी जगत की उत्पत्ति का कारण या कारण दक्षाई विष्णु है और उसमें वो शयन करते हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो कारण सागर है उसमें वो शयन करते हैं और सारे जगत का कारण वो कारण दक्षाई विष्णु है। फिर क्या होता है यही महत् स्रष्टा पुरुष महाविष्णु नाम अनंत ब्रह्मांडतारी लोम कूपे धाम। वही जो कारण सागर में शयन करते हैं कारण दक्षाई विष्णु उसको महापुरुष या महाविष्णु भी कहा जाता है। और उस महाविष्णु से उनके लोम कूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। कारण दक्ष है विष्णु है जो कारण सागर में शयन किया है, उनके लोम कूप से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और अनंत ब्रह्मांड उस कारण सागर में भर जाते हैं और उसी अनंत ब्रह्मांड में फिर क्या होता है, छह पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृज्या एक एक मूर्ति प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। वही फिर महाविष्णु या कारणदक्षाय विष्णु इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक मूर्ति के रूप में एक एक रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। एक एक मूर्ति प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया, एक एक ब्रह्मांड में लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। फिर उसी ब्रह्मांड में अनंत कोटि ये पुरुष विस्तार करते हैं उनका। फिर बाद में क्या होता है, उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके विराट वृष्टि जीवेरे ते हो अंतर्यामी क्षीरोदशाई ते हो पालन करता स्वामी। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर भीतर जाकर उनको गर्भदक्षाय विष्णु कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड के गर्भ में गए इसलिए उस गर्भदक्षाय विष्णु उसको कहते हैं। हर एक ब्रह्मांड में जो विष्णु गए हैं विस्तार महाविष्णु के विस्तार, तो वो उस ब्रह्मांड के भीतर जाने के कारण गर्भदक्षाय विष्णु उसको कहते हैं। फिर बाद में उस अंदर प्रवेश करने के बाद फिर पूरा अंधकार देखते हो, देखने के कारण फिर अपने ही शरीर से उस पसीना से बूंद निकलते हैं और बूंद से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और आधा ब्रह्मांड भर जाने के बाद उसमें वो गर्भदक्षाय विष्णु शयन करते हैं और शयन करने के बाद फिर उसी के नाभि कमल से एक उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के ऊपर जो ब्रह्मा का जन्म होता है उस कमल से, तो इस गर्भदक्षाय विष्णु को भी हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ से एक हिरण्य सोना का कमल सोने जैसा या सोना जैसा कमल प्रकट होता है। उसे ब्रह्मा प्रकट होता है उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा के फिर बाद में हम जानते हैं कि वो कई सालों तक उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ और सोचने लगे कि मैं कहाँ से, और फिर वो कमल की नाली के भीतर चक्कर काटते हैं कि मेरा स्रोत्र कहाँ से है, लेकिन वो कुछ पता नहीं पाते हैं। फिर बाद में तपस्या करने लगते हैं, फिर बाद में वो ध्यान करते हैं, फिर बाद में भगवान के द्वारा तप तप ऐसा तीन बार आवाज़ सुनते हैं, फिर बाद में तपस्या करते हैं, फिर बाद में भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मा का सृजन होता है। फिर उसी नाल में 14 ब्रह्म लोक उसमें नाल के अंदर भीतर रहते हैं, जो 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है उसी नाल के अंदर। फिर इस 14 लोक का निर्माण होता है, फिर भी वो श्लायमान नहीं होते हैं। उनको श्लायमान करने के लिए विराट वृष्टि जीवेरे ते हो अंतर्यामी चिरोदशाई ते हो पालन करता स्वामी। फिर बाद में वो गर्भदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके उस ब्रह्मा उस 14 लोक में प्रवेश करते हैं और हरेक कण कण में व्याप्त होते हैं, जो उनको चिरोदशाय विष्णु या परमात्मा रूप में कहा जाता है। जो हम कहते हैं कण कण में परमात्मा व्याप्त है, वो ये चिरोदशाय विष्णु उस हरेक वस्तु में व्याप्त होते हैं। तो इसी तरह हम समझते हैं कि भगवान हर एक वस्तु के स्रोत्र हैं, जिस तरह बाहर भी और अंतर भी, क्योंकि बाहर से जो भगवान की इच्छा के कारण संकर्षण से महाविष्णु या कारणदक्षाय विष्णु, उनसे गर्भदक्षाय विष्णु, उनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु, उसी तरह इस सृष्टि का बाहर से पालन करते हैं। लेकिन परमात्मा रूप में हरेक के अंदर हरेक कण कण में या हरेक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इसी बात को श्री वसुदेव जी कहते हैं कि हमें लगता है कि आप गर्भ देवकी के गर्भ में आपका आविर्भाव हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप परमात्मा रूप में पहले से ही विद्यमान थे सारे जगत में। हमें लगता है कि ऐसा प्रकट हुए हैं, लेकिन वास्तव में आप पहले से विद्यमान थे। तो जिस तरह प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस तरह अनुभव होता है परमात्मा का, लेकिन साक्षात्कार या दृश्यमान नहीं होता है। अनुभव कैसे होता है परमात्मा का? जिस तरह कोई घटना घटती है, तब बड़े बड़े वैज्ञानिक या कोई भी कितना बड़ा बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनको लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण है, किसी का है नियंत्रण। उसको अनुभव गम्य कहते हैं, कहा जाता है। उनको लगता है कोई है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु, तीनों लोगों के ऊपर उसका शासन था, लेकिन फिर भी जब उनका भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया, तब वही अपने परिवार को उपदेश देते हुए या तत्व बताते हुए कहते हैं कि ये समय के कारण या देव योग से या किसी भी कारण ऐसी घटना घटित होती है कि किसी का मृत्यु होता है, जिसका जन्म है उनका मृत्यु है। तो उनको मानते नहीं थे विष्णु को, लेकिन उनका अनुभव था, अनुगम्य उनको लगता था कोई हमारे ऊपर कुछ का शासन है। यहाँ तक हिरण्यकश्यपु जैसा, और चाहे इस भौतिक जगत में कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनको अनुभव गम्य तो कुछ होता है कि नहीं, हमारे ऊपर किसी का शासन है। लेकिन वो दृश्यमान नहीं जान पाते, उसको देख नहीं पाते हैं। जिस तरह ये हवा चलती है सारे जगत में, हवा का हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह भगवान का शासन सारे जीवों के ऊपर है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। उसी बात को श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में सारे जीवों का अनुभव भी मत, लेकिन वो देख कौन पाते हैं? जो प्रेमानंदन सूरित भक्त विलोसन संत सदैव हृदय विलोकयंती, इस श्लोक को कोट करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वही इस बात को समझ पाते हैं, और वही जो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त रहता है वही भगवान को देख पाते हैं या दर्शन कर पाते हैं। लेकिन दूसरे लोग अनुभव वो सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई शिकार शक्ति है, नियंत्रण है, लेकिन वो दृश्यमान या देख नहीं पाते हैं। तो उसी तरह इस भौतिक जगत के अंतर भी है भगवान और बाहर भी है। इस श्लोक में जो आया है अंतर बाहर से और सर्व आत्मन, इसी बात से हम जानते हैं कि भगवान हरेक के स्रोत्र है, सर्व के आत्मा है। हमारे शरीर को टिकाने के लिए हमारे आत्मा है, और आत्मा हमारे शरीर से निकल गया तो शरीर के तुरंत नष्ट हो जाता है। उसी तरह इस भौतिक जगत को चलाने के लिए परमात्मा सर्व आत्मा का आत्मा है, सभी जीवों के आत्मा परमात्मा है। परमात्मा साथ होते ही ये शरीर चलता है। अगर इस शरीर में आत्मा रहेगा और परमात्मा नहीं है तो भी शरीर नहीं चल पाता है, लेकिन जब भी परमात्मा इस भौतिक शरीर में आते हैं तभी चलायमान होते हैं। इसी तरह भगवान हरेक कण में व्याप्त है और हरेक वस्तु में, और बाहर भी और अंतर भी। अंतर मतलब ये जो भगवान की इच्छा के कारण इस सृष्टि की रचना होती है, और किस तरह उनकी इच्छा के कारण संकर्षण से सारे विश्व की सृष्टि होती है, वो आंतरिक कारण है। और बाहर जो हम देखते हैं भगवान की सत्ता को, उसी सत्ता से हम जान सकते हैं भगवान सर्वव्याप्त है। और प्रभुपाद दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं, और कोई इसमें तर्क कर सकते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है तो उनको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो प्रभुपाद दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक राजा होता है और उनके सारी सत्ता उनके सारे राज्य में चलता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि राजा को हर एक कचहरी में या हर स्थान में उपस्थित होना पड़ता है। वो एक ही स्थान पर अपनी सत्ता को चलाता है। उसी तरह भगवान गोलोक में निवास करते हुए सारे सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाते हैं, और वो अपनी इच्छा से वो प्रकट करते हैं और अपनी इच्छा से उनका विनाश करते हैं। तो इसी तरह यह भगवान बाहर भी अवस्थित है और अंदर भी। तो इसी बात को समझने के लिए श्री सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु विस्तार से वर्णन करते हैं, और हम देखते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है और उनका अनुभव होता है लेकिन दृश्यमान नहीं होते हैं। तो प्रायः हम किसी से यह चर्चा करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे होता है, और इस ब्रह्मांड में कैसे भगवान व्याप्त है ये भी समझ अल्प बुद्धि वाले जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। श्री वसुदेव जी कहते हैं। और साथ साथ में कहीं तर्क भी करते हैं, और कहीं कहीं लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे इस्कॉन के भक्त जब प्रसार करने के लिए जाते हैं गुजरात में या कहीं भी, तो तर्क करते हैं, कहते हैं कि अखाद्य चीज नहीं खाना चाहिए, यानी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तब कोई कोई ऐसा तर्क भी करते हैं, गुजरात में हुआ था ऐसा, कि क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन, कि कृष्ण ने भी खाया था प्याज लहसुन, ऐसा कहते हैं, कृष्ण ने भी खाया था। तो भक्त तो कहते हैं कि भगवान ने तो माखन मिश्री खाते, कभी तो खाया नहीं, ऐसा भागवत में कभी सुना नहीं और पढ़ा भी नहीं कि भगवान ने भी प्याज लहसुन खाया था। तो तर्क करते हैं, कहते हैं कि यशोदा मैया ने जब भगवान से कहा, लाला ने, कि आपने माटी खाया है, तो कृष्ण कहते कि नहीं, मैंने माटी नहीं खाया। तब यशोदा मैया फिर से कहते हैं कि आपने माटी खाया है, तो कृष्ण मना करते करते फिर यशोदा मैया कहते कि मुंह खोल, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे मुंह में माटी है कि नहीं। तब भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड जो हम चर्चा किए वो भगवान के मुख में देखते हैं यशोदा मैया, जो बाहर भी है और अंतर, भगवान के अंतर भी है। तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में देखते हैं यशोदा मैया। तो देखने के कारण पूरा विश्व और साथ साथ में सभी, ये भारत और उसमें भी ब्रज, उसमें भी नंदगांव, गोकुल और उसमें भी यशोदा मैया, वो सब दृश्य उनको दिखाई पड़ता है। तब वो कहता है व्यक्ति जो तर्क किए थे कि भगवान के मुख में जो ब्रह्मांड था जो यशोदा मैया ने देखा, तो उस ब्रह्मांड में सारे भौतिक जगत देखा, उसमें भारत भी देखा, तो उस भारत में भी ये प्याज लहसुन तो उसी में उगता है और उसी में गोदान भरा हुआ है, तो भगवान के मुख में ही है ना वो, तो भगवान ने खाया ना वो प्याज लहसुन, ऐसा तर्क करते हैं। वास्तव में ये सिद्धांत है कि अगर वो बात को और विचार करे, इसी बात को जो देखता है वो व्यक्ति के तत्व में हरेक में वस्तु में भगवान है और भगवान के मुख में है, लेकिन उसको प्यास लहसुन ही दिखाई देता है। सारे जगत अगर वो जान ले कि भगवान के मुख में है तो उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते क्योंकि वो अल्प बुद्धि है ना। तो इसी तरह ये भगवान के मुख में यशोदा मैया ने भी ये सारा ब्रह्मांड देखा, और इसी तरह ये भगवान बाहर भी है और अंतर भी है, और सर्व वस्तु के वस्तु, सर्व वस्तुओं का वस्तु यानी स्रोत्र भगवान के शरीर से यह ब्रह्मांड निकला है। अरे एक कण हम देखा ना सब, भगवान के शरीर के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये सिद्धांत को कोई जान ले तत्व से, तो निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह वसुदेव जी स्तुति करते हुए भगवान कृष्ण से ज्ञान से पूर्ण होकर भगवान से स्तुति करते हैं, और इसी तरह इस प्रसंग को हम आगे सुनेंगे और प्रभुवाद की कृपा से हम इस स्तुति को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, और वास्तव में हम ये जान पाते हैं कि इस भौतिक जगत या सारे सृष्टि का मूल सूत्र भगवान कृष्ण ही है, उनके अलावा और कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम, इसी बात से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो वनमाली प्रभु से पूछ सकते हैं इस बारे में। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंद। Mm-hmm.